एक वास्तव में एक रस है। जैसे हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन किया है, जैसे कोई गन्ने का रस है, कैसा लगता है? सबके एकदम चेहरे खिल गए एकदम से। गन्ने का रस, ऐसे हम लोग आम का रस है उसका पान करते, आम रस, मैंगो शेक, ऐसे अनेकों प्रकार के रस हैं। अंगूर का रस है, सेब का रस है, अलग अलग प्रकार के रस हैं। इन सभी को विषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी एक रस है। कैसा है? विषय रस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विषय रस। हरे कृष्ण। ये जो रस है, ये ऐसा रस है जिसको स्वीट पॉइजन कहते हैं। ऐसा स्वीट पॉइजन, मीठा लगता है लेकिन है क्या, जहर है ये। साथ में इसको स्लो पॉइजन भी कहते हैं, धीरे धीरे मारता है। लगता है ऐसा है कि मार नहीं रहा है, जीवन दान दे रहा है, इतना प्रसन्नता दे रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी सारी शक्तियों का हरण करता है। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि तो अग्नि जलाती है, पता चलता है कि हाँ अग्नि जला रही है। एक अग्नि और होती है, उसको कहते हैं काम अग्नि। कौन सी अग्नि? काम अग्नि, जो जलाती है लेकिन पता नहीं चलने देती। काम में जीव जलता है लेकिन दिखाई नहीं देता, इसे काम अग्नि कहते हैं। ये सब विषय रस में या काम अग्नि के द्वारा वही व्यक्ति प्रभावित होता है जिसको जीवन में कभी भक्ति का रस ना मिला हो। अगर भक्ति का रस किसी को मिल गया है तो फिर वो विषय रस में रुचि नहीं दिखाता। विषय रस में सर्वोत्कृष्ट रस है जिसे काम रस कहते हैं या स्त्री पुरुष के संबंध का रस कहते हैं। इससे जीव सहजता से नहीं निकल पाता। दूसरे शब्दों में इसके अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। इसको कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार प्रकार के रस जीव संसार में अनुभव करता है। भोजन की वस्तुओं में अलग अलग प्रकार का रस अनुभव करता है। निद्रा में अलग रस का अनुभव करता है वो। भयभीत अवस्था में जब उसको बचाव करने की कहीं से सुविधा प्राप्त हो जाती है, थोड़ा खुश हो जाता है, मेरे पास बंदूक आ गई, मेरे पास बढ़िया मकान मिल गया, मेरे पास बढ़िया बैंक बैलेंस हो गया, इससे आदमी प्रोटेक्टेड महसूस करता है। और मैथुन मिल जाए तो उसको अनंत सुख का अनुभव जैसे फील होता है, आदमी हवाई किले बनाने लगता है, डूब जाता है उसमें। तो ये चार प्रकार के रस जो संसार में हैं, जिसमें जीव प्राय विचरण करता है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो इन चारों रसों में कोई आनंद का अनुभव नहीं करते। उनको ये बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में संसार में इन चीजों में रस नहीं है। वो इन सब चीजों को कचरा समझते हैं। सनातन गोस्वामी उस पारस मणि को, सोने को नहीं, सोने की भी जड़ जो पारस मणि है उसको क्या समझ रहे हैं? कचरा समझा। और वो ब्राह्मण जो कहां से आया था, वर्धमान से आया था, पैदल चल के यात्रा करता हुआ, कष्ट उठाता हुआ, इतना दूर कोई कष्ट उठा के आएगा? अगर उसको पता हो कि वो कचरा है। कितना महत्वपूर्ण उन्होंने समझा, और वो उसको लेने के लिए आए थे। लेकिन उनके दिमाग से भी उसका महत्व तो निकल गया, उन्होंने भी उसको फिर थोड़े ही समय में कचरा समझा और क्या किया, फेंक दिया। कहाँ? यमुना जी में, उस पारस मणि को फेंक दिया। कैसे वो कचरा समझ में आया उनको? उनको जब सनातन गोस्वामी का दिव्य सानिध्य मिला, उनको जब सनातन गोस्वामी का दिव्य सानिध्य मिला, उस दिव्य सानिध्य तो पहले ही मिल गया था उनको, दर्शन होते ही मिल गया था। तब उन्होंने मांगा क्यों उनसे पारस मणि, बजाय उसके महामंत्री मांग लेते पहले ही। और उन्होंने दे भी दिया था उनको और लेकर के चल भी पड़े थे, तो भी उनके चित्त में पहले वो दिव्यता का अनुभव इतना क्यों नहीं हुआ कि उसको पहले से ही बिना बताई कचरा मान लेते हैं? जब उन्होंने स्वयं से जिज्ञासा किया, क्या किया? स्वयं से जिज्ञासा किया, मन में विचार किया, अरे यार उन्होंने तो इसको कचरे में डाल के रखा था, कचरे में डाल के रखा था, तो क्या कारण था इसका? मतलब उनके पास जरूर कोई विशेष वस्तु होगी जो इससे भी श्रेष्ठ होगी। जब इसको आदमी कचरे में डाल रहा है तो किसी विशेष वस्तु को संभालता होगा। ये मन में क्या आई? जिज्ञासा आई। जब तक हमारे चित्त में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक हमारे चित्त में श्रद्धा नहीं होती, तब तक हम संगति पाकर के भी अछूते बने रहते हैं। इसलिए चित्त में जिज्ञासा होना ये मनुष्य जीवन का धर्म है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन दुर्भाग्य हम जीवों का, हम जानवरों वाली जिज्ञासा में निरंतर रमण करते रहते हैं, कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ बढ़िया सोएंगे, कैसे अपना बचाव करेंगे, कैसे मैथुन करने को मिले। इस जिज्ञासा को भूल जाते हैं, ये सब चीजें तो जानवरों के लिए भी उपलब्ध हैं। हमारा जिज्ञासा का विषय ये ना हो करके होना चाहिए, भगवान कौन है, हमारा उनसे नाता कैसे जोड़ा जाए, कैसे हम उनकी प्राप्ति करें, कैसे समस्त कष्टों से हम अपने आप को बचाएं, ये अलग प्रकार की जिज्ञासा है। जो भक्तों के दिव्य सानिध्य में आने से, उनको देखने से उत्पन्न होती है, लेकिन जिसके हृदय में बिल्कुल ही खोखलापन है, जिसके हृदय में पूरी तरह से विषयों ने ये साम्राज्य बिठा रखा, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है, वो डूबा ही रहता है संसार। यहां जिज्ञासा थी, श्रद्धा थी, ये भी थोड़ी आराधना मांगती है, इसने भी शिवजी की आराधना की थी, इसलिए वैष्णव आराधना से ये सब कृपा प्राप्त होती है। वैष्णवों के प्रति किया गया थोड़ा सा भी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता, परिणाम स्वरूप शिवजी की कृपा से उनको सनातन गोस्वामी का सानिध्य मिला, और सनातन गोस्वामी की विशेषता से उन्होंने इसको कचरा समझा और फिर भक्ति रस का अनुभव किया। किसने दिया भक्ति रस? सनातन गोस्वामी। जिसके पास भक्ति है वही आपको दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं वो कहां से भक्ति देगा। तो भक्ति हम तो अपने आप में मान लेते हैं कई बार, जैसे मायावादी लोग मान लेते हैं ना कि हम तो मुक्त हो गए, मुक्त अभिमान है ना कहा जाता है, खाली अपने आप को अभिमान करके गर्व करके वो ऐसा सोच लेते हैं मन में, हम तो मुक्त हैं, अब कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मुक्त होने के लक्षण होते हैं, ऐसे ही भक्त होने के लक्षण होते हैं कि हम भक्त हैं या नहीं है। कई बार हम भक्त बने बिना ही अपने आप को भक्त घोषित कर देते हैं, और बहुत सस्ते भक्त बन जाते हैं, जैसे गले में कंठी पहन लिया, चोटी लगा लिया और तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, बन गए साहब भक्त। ये बहुत चीप भक्त हैं, और ऐसे भक्त बनने के लिए बहुत सारे लोग बहुत लालायित रहते हैं। कई बार उनको लगता है कि अरे उसका तो तिलक लगा हुआ है, कंठी है, धोती है, कुर्ता है, चोटी है, फटाक से मैं ऐसा कब बनूंगा। केवल इन लक्षणों को लोग देख पाते हैं और इन्हीं को वो जल्दी से जल्दी धारण करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये नहीं मिला तो जैसे भगवत धाम नहीं मिलेगा। अच्छी बात है ये, लेकिन ये तभी शोभा देता है जब जैसे किसी बालक का किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तब उसे यूनिफॉर्म शोभा देती है। एडमिशन हुआ नहीं और यूनिफॉर्म पहन पहन के घूमने लग गया तो चीटिंग है ना। इसलिए हमारा पहले भक्ति में एडमिशन होना अनिवार्य है, होना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई कहे मेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ क्यों, को पहनना नहीं चाहता इन चीजों को, और ऐसा सोच के बहाना मारे कि नहीं नहीं मेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको फिर संसार का भी यूनिफॉर्म पहन करके विषय रस चखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये यूनिफॉर्म से थोड़ा सा बचाव होता है ना यार, धोती कुर्ता पहना हुआ है, कैसे मैं यहाँ पर समोसा खा लूं जिसमें लहसुन प्याज मिला हुआ है, और धोती कुर्ता नहीं है तो बिंदास किसी भी दुकान पर घुस जाता, कुछ भी खाता भी। धोती कुर्ते से कम कुछ शर्म तो आती है। इसका अर्थ ये भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दोनों पक्षों को प्राप्त करने का चेष्टा करना चाहिए। विषयों से छूटने के लिए यह सहायक है इसलिए इसको प्राप्त करना है, और भक्ति में एडमिशन होना चाहिए तभी यह शोभा देगा, अन्यथा भक्ति में एडमिशन नहीं तो फिर इसके प्राप्ति का क्या लाभ। इसलिए भक्ति में प्रवेश अत्यंत आवश्यक है। ये मनुष्य शरीर मिलता ही है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। तो भक्ति में प्रवेश किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है कैसे पता चले? बोले भक्ति में विशेष रूप से आने वाले व्यक्ति को रस की प्राप्ति होती है। किसकी? रस की। कोई व्यक्ति साधारण विषय रसों को तभी तो छोड़ पाता है जब उसको हायर रस मिले, जब हायर रस नहीं मिलेगा तो लोअर रस को कैसे छोड़ पाएगा। तो भक्ति क्या है? एक रस है। कैसा रस है? ये विष वाला रस नहीं है, जहर युक्त रस नहीं है, ये कैसा है? अमृतमयी रस है। इस अमृतमयी रस को तारतम्य के आधार पर 5 स्तरों में विभाजित किया है। जैसे खाली आम का रस हो उसमें थोड़ा दूध मिला दिया जाए तो वो रस थोड़ा और विशेष बन जाता है, उसमें थोड़ा सा काजू मिला दिया जाए तो और श्रेष्ठ बन गया, बादाम वगैरह मिला दिया जाए तो और बढ़िया बन गया। तो है वही रस लेकिन उसकी तारतम्यता है, अलग अलग तरह का है, अलग अलग स्तर पर है। ऐसे ही जो भक्ति का रस है वो पांच स्तर पर विभाजित किया गया है, जिसको कहते हैं शांत रस। भक्ति में आने वाले व्यक्ति को सबसे पहला रस कौन सा मिलता है? शांत रस। उसके चित्त में जैसे जलता हुआ आग के व्यक्ति को और अचानक से शीतलता प्राप्त हो जाए तो उसको कैसा लगेगा? कितना शांत है। जैसे अत्यधिक प्यासे व्यक्ति को बढ़िया शरबत पिला दिया जाए, कैसा लगेगा? कितना शांत। जो धूप में लू में मर रहा हो और उसको अचानक से एसी दे दिया जाए, बढ़िया, ऐसा लगेगा उसको? शांत, जान में जान वापस। तो संसार के विषय रसों से जिससे आदमी अत्यधिक जलता है और उसको जो भक्ति का रस मिलता है, सबसे पहले उसको शांत रस की प्राप्ति होती है भक्ति। उसके बाद दास्य रस मिलता है उसको, उससे श्रेष्ठ साख्य रस की प्राप्ति होती है, उससे श्रेष्ठ वात्सल्य रस की प्राप्ति होती है, उससे श्रेष्ठ माधुर्य रस की प्राप्ति होती है। इस छह के छह गोस्वामियों के पास कौन सा रस है? हाँ, कौन सा रस है? माधुर्य रस है इनके पास। इनके पास शांत रस नहीं है क्या? जिसके पास माधुर्य है उसके पास शांत रस भी है, जिसके पास माधुर्य है उसके पास दास्य रस भी है, उसके पास साख्य रस भी है, उसके पास वात्सल्य रस भी है, उसके पास माधुर्य रस भी है। ये रस है। हमारे पास कौन सा रस है? लेकिन भाषण देने के लिए तो माधुर्य रस की बातें करने में कोई देर थोड़ी लगती है। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यू आर वेलकम हार्टली फ्रॉम ऑल द डिवोटीज ऑफ द आश्रम। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो हमारे पास संसार में प्राय हम जो प्रदर्शन करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को माधुर्य से नीचे नहीं समझता कई बार, लेकिन हमारे अंदर वो लक्षण क्या हैं वो पता होना चाहिए। वास्तव में कौन सा रस हमारे अंदर है? तो जो रस की प्राप्ति है, ये भक्ति की क्रियाओं को करने से स्वयं में भी होती है। हरे कृष्ण, तो शांत रस का लक्षण क्या है? किसको प्राप्त है शांत रस, किसको नहीं? शांत रस का पहला लक्षण है, प्रधान लक्षण है, गुण के जिसको कहते हैं, अगर ये किसी में है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास शांत रस है। इस गुण का नाम है निष्ठा। क्या कहते हैं? निष्ठा। अगर किसी के पास निष्ठा है तो समझ सकते हैं कि उसने शांत रस का अनुभव करना आरंभ कर दिया। जिसके पास क्या हो? निष्ठा। और निष्ठा किसको कहते हैं? निष्ठा कहते हैं जब कोई व्यक्ति तिष्ठति अर्थात स्थित हो गया। क्या हो गया? स्थित हो गया, अच्छी तरह से आसन जमा के बैठ गया। बोले निःशेषेन तिष्ठति इति निष्ठा। ऐसा किसी क्रिया में गड़ गया, क्या वहां से हिलाने पर भी वो हिलने वाला नहीं है, उसको क्या कहेंगे? निष्ठा। जैसे खूंटा होता है, खूंटे खूंटे को जमीन में थोड़ा सा गहरा गाड़ दो, अब पूरी ताकत लगा लो, उखड़ने वाला नहीं। एक भूतिया बगीचा था जिसमें भूत रहता था। रहता था या नहीं रहता था ये तो नहीं पता, लेकिन नाम उसका ऐसा पड़ गया था। कई बार बंगले होते हैं ना जहां पर लोग कोई मर्डर फर्डर हो जाता है तो उसका नाम रख देते भूत बंगला। हम भी रहे अपने पढ़ाई के दौरान में भूत बंगले में। तो व्यक्ति शुरुआत में उसमें जाने से डर लगता था, किसी को भी सब कहते थे आप जाओ रहने के लिए, आप जाओ रहने के लिए। कठिन हो जाता है कई बार, हमें भी डर लग रहा था पहली रात उसमें कौन सोए। उस समय एक प्रभु जी आते थे हमारे पास प्रचार करने के लिए बॉम्बे से, हिज ग्रेस गोखलेश्वर प्रभु। हमने सोचा इनको तो पता नहीं, इनको ही सुलाते हैं। तो सबसे पहली रात उनको ही सुलाया गया और उनके साथ हम भी सोए थे। देखा कुछ नहीं हुआ तो फिर धीरे धीरे सब लोग प्रवेश किए। तो बहुत सारे लोग कई बार दिखाते हैं अपने ताकत को, अहंकार को, नहीं नहीं मैं भूत भूत में नहीं मानता। भक्तों में ऐसे ही बहस हो रही थी। वो कह रहा था कि मैं नहीं मान, नहीं मानता तो जा फिर आधी रात को जरा वहां खूंटा ठोक करके दिखा दे। तो चला गया खूंटा ठोकने के लिए। तो खूंटा गाड़ने लगा तो जल्दबाजी में उसका धोती का टुकड़ा थोड़ा सा खूंटे के नीचे आ गया और ठोकता गया ठोकता गया, धोती अंदर चली गई उसकी। तुरंत डर तो लग रहा था, ऊपर से दिखाना चाह रहा था परिश्रम करके, कैसे भी जोर लगा करके मन को संभालता हुआ वापस भागने लगा तो उसकी धोती अटक गई। अब उसको लग रहा है कि उसकी धोती को भूत ने पकड़ लिया है। तो फिर वो भाग रहा हो, धोती निकल नहीं रही है, तो फिर बार बार कह रहा है हे भूत छोड़ दे हमें, बहुत बड़ी भूल हो गई हमको, अब दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे, आज छोड़ दे बस, आज छोड़ दे बस। बार बार ताकत लगाए, पीछे मुड़ के ही ना देखे डर के मारे, ताकत लगाए और उसकी धोती फंसी हुई है। बेचारा भयभीत होकर के काफी देर तक चिल्लाता रहा, डर बढ़ता रहा, आखिर में प्राण छूट गए उसके। डर इतना खतरनाक होता है, ये तो भूतों का चक्कर होता है कई बार ऐसा। भूत भूत तो कुछ नहीं था, लेकिन जब खूंटा घड़ जाता है उसी ने अपनी ताकत से गाड़ा, लेकिन अब धोती निकल नहीं पा रही वापस, कितनी भी ताकत लगा रहा। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भक्ति के अंगों में गढ़ जाता है, भक्ति के अंगों में गढ़ जाता है, इसे नवदा भक्ति कहते हैं। जैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मवेदनम पाद सेवनम, इन अंगों में जब भक्त गढ़ जाता है तब उसके अंदर माना जाता है कि अब इसके अंदर क्या आ गया, निष्ठा आ गई। इन अंगों में वो कब प्रवेश करता है, इसका क्या लक्षण? अभी जैसे हमारी स्थिति हम झांक के देखें तो हमारे अंदर तो 24 घंटे में 24 घंटे इन अंगों में प्रवेश नहीं है। हमारे अंदर तो 2-4 घंटे का भी प्रवेश नहीं, ये भी नहीं कि 2-4 घंटे सुबह, एक आध घंटा शाम को, ऐसी निष्ठा के साथ रहें कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मंगल आरती नहीं छूटेगी, कुछ भी हो जाए लेकिन गुरु पूजा नहीं छूटेगी, कुछ भी हो जाए जप नहीं छूटेगा, कुछ भी हो जाए भागवत कथा नहीं छूटेगी। 2-4 घंटे की भी निष्ठा नहीं है। अब हमें शांत रस का अनुभव हम सोचें कि हो जाए तो कैसे होगा, कैसे होगा, कितने दूर हैं हम भक्ति के रस से। और यहां सनातन गोस्वामी की, रूप गोस्वामी की किस स्तर की निष्ठा है भाई। पहले कुछ करोगे तो ही तो आपका अनुभूति होगी। बहुत सारे लोग क्या करते पता है? नहीं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नाए। बोले शास्त्र कहता है कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध है, उसको कभी साधन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए साधन करने की क्या आवश्यकता, ये तो कृपा से मिलेगी। कैसे मिलेगी? कृपा से मिलेगी। और वही शास्त्र ये भी कहता है कि साधन बिना कृष्ण भक्ति साध्य नहीं हो सकती, आपको साधन भी करना पड़ेगा। ये तो दोनों बातें विपरीत है ना, दोनों बातें कैसी हैं? विपरीत। तो इन दोनों श्लोकों को लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो साधन के प्रति इतने इतने निपुण हो जाते हैं, इतने अंदर प्रवेश करते हैं, इतना साधन उस ऊंचाई के स्तर पर करके दिखाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब तो हम साधन से ही भगवान को पा लेंगे, और अहंकार करने लगता है, मैं इतना माला करता हूं। उनकी चाल ढाली बदल जाती है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाता है ना पैसे धेले से, उसकी चाल कैसी बदल जाती है, उसके कपड़े बदल जाते हैं, उसके सब चीजें सब सुविधाएं उस स्तर की हो जाती है, अलग ही स्तर की हो जाती है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, हम साधन से कृष्ण को पा लेंगे, और वो साधन करके दिखाते हैं और 64 माला करते हैं, रात दिन भक्ति में जो क्रियाएं नियमित रूप से बताई गई हैं उन क्रियाओं में नियम से लगे रहते हैं, सालों साल तक मंगल आरती करते रहते हैं, और ऐसा करते ही उनकी क्या है, चाल ढाल बदल जाए। अब तो हमारा राजभोग का अधिकार है, अब तो हमें राजभोग मिलना चाहिए। इतने समय बीत गया, मेरे को इतनी जप करता हूं, मैं इतना साधना करता हूं, इतना प्रचार करता हूं, इतना फंड कलेक्शन करता हूं, ये सब साधना है मेरी, इसलिए बढ़िया स्टैंडर्ड की घड़ी, नरसिंह कवच, और बढ़िया एकदम उसी स्टैंडर्ड का बीड बैग रहेगा, अलग स्टैंडर्ड का वो स्लीपर्स रहेंगे, बढ़िया कैप होगा, हाथ में शानदार घड़ी होगी, राधे राधे वाली कंठी माला होगी, और फिर बढ़िया गाड़ी घोड़ा के साथ एकदम उसका, मतलब आप देखोगे ना तो ऐसे चलेगा वो एकदम से, दूसरे दूसरे भक्तों को तो सोचेगा ये तो आज 2 ही साल हुए इसको तो मंगल आरती करते हुए, इसको 4 साल हुए, 10 साल से लगा हुआ, कभी गैप नहीं मारा। ऐसे लोग नियम आग्रही कहलाते हैं, रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे कहलाते हैं नियम आग्रही, जिन्होंने नियम को इतना आग्रह करके ग्रहण किया है कि केवल नियम वाले ही रह गए वो, बस अब उन्होंने कृपा शक्ति को त्याग दिया, कृपा की आकांक्षा उनके जीवन में नहीं है, अब वो दीनता नहीं रही, विनम्रता नहीं रही, किसी वैष्णव को देख करके उनको अपराध का भय नहीं रहा, विशेष रूप से छोटे लोगों को तो समझते ही नहीं, गाजर मूली समझते, कितने दिन हुए इसको, अभी तो दिनों से गिनते हैं वो वैष्णव को, तो बड़े को तो कौन कौन सा इतना विशेष रूप से समझेंगे, वो सोचेंगे बस अब तो मैं इसके बराबर हो ही गया, ये तो कई बार गैप मार देता, मैं तो गैप भी नहीं मारता, जब बड़े को देखते हैं तो वो उसको भी फिर उसको उसकी साधना के अनुसार देखते हैं, नीचे वालों को दिनों से देखते, फिर उनके अंदर दीनता नहीं देखी जाती। ऐसे लोग भक्ति युक्त अपराध के शिकार हो जाते हैं, भक्ति जनित अपराध के शिकार हो जाते हैं, भक्ति से ही पैदा होने वाला ये अपराध है जो भक्ति करने से ही पैदा होता है, ये अनर्थ है, भक्ति जात अनर्थ कहते हैं। दूसरे पक्ष के लोग क्या करते हैं? अरे क्या फायदा होगा साधना करके, अहंकार आ जाएगा, बोले हम अगर अधिक माला करेंगे, मंगल आरती नियमित करेंगे और कभी छूटेगी नहीं, तो फिर तो अहंकार आ जाएगा। हाँ, ये तो कृपा का मार्ग है प्रभु, आप ये मत सोचो कि आप ऐसे माला घुमाने से भगवान को पालोगे, भूल जाओ इसको, तो कृपा का मार्ग, जब उसकी इच्छा होगी तब अपने आप कृपा हो जाएगी। उदाहरण देते हैं, बोले अनेकों शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान को ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान ही हमारा वरण करें कृपा करके, जैसे कोई स्त्री स्वयंवर में किसी का वरण करती है। तो स्वयंवर में तो बड़े सारे राजकुमार बैठे रहते हैं, वो स्त्री किसी विशेष राजकुमार का वरण कर लेती है। अब इसमें राजकुमार का क्या योगदान है इतना, तो स्त्री की इच्छा है जिसको वरण कर ले। ऐसे ही कृष्ण के वरण की इच्छा है, वो किसको वरण कर ले, किसको चुन ले, किसको अपना बना ले, किसके ऊपर रीत जाए, उनकी इच्छा है, ये तो कृपा का मार्ग है। इसलिए अहंकार से बच के रहना पड़ेगा, हमें दीन बनना पड़ेगा, इसलिए हम ये साधन नहीं करेंगे। बोले ज्यादातर लोग इन्हीं दो विभागों में बटे हुए देखे जाते हैं, इनको कहते हैं नियम अग्रही, एक नियम आग्रही, एक नियम अग्रही। नियम आग्रही जो नियमों को ही पकड़ करके बैठते हैं, नियम अग्रही जो नियमों को ग्रहण ही नहीं करते, अग्रही नहीं ग्रहण करने वाले, ये दोनों ही ठीक नहीं। बोले ये दोनों विपरीत दिशाओं वाले जीव हैं, ये भक्ति के प्राप्त करने वाले जीव नहीं। जबकि शास्त्र कह रहा है साधन भी चाहिए और नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति ये साधन से प्राप्त होने वाली नहीं है। ये दोनों विपरीत बातें हमें प्रतीत हो रही हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों विपरीत बातें नहीं, इनमें तालमेल है। आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे एक बालक क्या अपने प्रयास से माता के स्तन से दूध ग्रहण कर सकता है यदि माता कृपा ना करे? यदि माँ अपने बच्चे को स्वयं से दूध ना पिलाए तो क्या वो बालक दूध प्राप्त कर सकता है? बोले कभी नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरी ओर यदि बालक ना रोए, ना माँ को पुकारे, तो क्या माँ आएगी उसको दूध पिलाने के लिए? प्राय नहीं आएगी, सोचेगी भूखा है ही नहीं, भूखा है ही नहीं। जब छोटा सा बालक जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, माँ 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 चिल्लाता है, माँ किसी काम को कर रही होगी, उसको भी छोड़ करके क्या करती है, ओ मेरा बालक भूखा है, तुरंत उसे 50 काम छोड़ करके उसको गोद में उठाती है और फिर अपने स्तन को उसके मुंह में प्रदान करती है। माँ ने क्या किया? कृपा किया। माँ ने क्या किया? कृपा किया। बालक रोना ही तो जानता है ना, कृपा को ग्रहण करने की तो सामर्थ्य उसमें है नहीं। अब उसने रो करके अपनी आकांक्षा को व्यक्त किया और माता की इधर हृदय पिघला तो माता कृपा करने के लिए पहुंच गई। हृदय द्रवीभूत होता है, और जब द्रवीभूत होता है तो 50 कार्यों में लगे हुए होकर के भी दौड़ करके आते हैं, और फिर हमें भक्ति रस का वाहन कराते हैं। भक्ति स्वतंत्र है, भगवान की स्वरूप शक्ति है। क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए? वाईफाई का लाइट से क्या कनेक्शन था?
इधर कनेक्ट है।
तो जब हम ऐसी साधना करते हैं, ऐसी पुकार करते हैं आर्त भाव से, तब भगवान अवश्य कृपा करते हैं, और उनकी कृपा से हमारे चित्त में रस का उदय होता है। तो जब निष्ठा युक्त कोई व्यक्ति इस भक्ति की क्रिया में लगता है, तो निष्ठा वाले व्यक्ति के स्तर पर आते ही, निष्ठा का गुण प्राप्त होते ही, निष्ठा का गुण प्राप्त होते ही समझा जा सकता है कि अब इसको कौन सा रस मिलना चालू हो गया, शांत रस। कौन सा रस मिलना चालू हो गया? शांत रस। अभी हमारे अंदर निष्ठा ही नहीं होती भगवान और भगवत तदीय वस्तुओं में, भगवान की वस्तु। अभी तो हम कभी मंदिर में रह लिए, कभी मंदिर छोड़ के चले। निष्ठा है, कभी तो भक्ति रस पान करने की इच्छा हो गई तो कभी विषय रस की ओर चल पड़े मुंह उठाकर। तो निष्ठा कहाँ है? या उन मंदिरों में जाकर के प्रयास कर रहे हैं जिन मंदिरों में बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलती हैं, बढ़िया सोने को मिलता हो, बढ़िया आहार निद्रा भय मैथुन की सुविधा हो, वहां हम जाकर के चेष्टा करते हैं? जबकि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इनका जीवन कैसा है? बोले यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, हाँ, न मन्यते अधिकम ततः। गीता में भगवान कह रहे हैं ये भक्त उस स्तर का होता है कि जिसको प्राप्त करने के बाद यम लब्ध्वा, इससे श्रेष्ठ कोई सुख है वो मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। यस्मिन स्थिते, बोले जिसमें स्थित होने के बाद न दुखेन गुरान अपि विचालित, बोले जिसमें स्थित होने के बाद बड़े से बड़ा दुख उसके जीवन में आ जाए वो भी उसको विचलित नहीं कर सकता। अर्थात इस शांत रस की प्राप्ति के पश्चात इससे बड़ा कोई सुख मानता नहीं, और दुनिया का कोई दुख इसको विचलित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो यस्मिन स्थिते, इसमें स्थित हो गया, इसमें निष्ठित हो गया, इसमें गढ़ गया, इसे निष्ठा कहते हैं। और ये सबसे पहला रस है। ये कैसे मिलेगा? न तो नियम आग्रही होने से मिलेगा, न नियम आग्रही होने से मिलेगा। नियमों को ग्रहण भी करना पड़ेगा, और नियमों को ग्रहण का अहंकार से भी बचना पड़ेगा। अर्थात अर्थात विनम्रता पूर्वक नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा। और भक्ति की जो साधन की क्रियाएं हैं, इनमें क्या होना पड़ेगा? निष्ठित होना पड़ेगा, इसमें निष्ठावान बन जाए, तब जाकर के भक्ति रस मिलेगा। सनातन गोस्वामी साधन की 24 घंटे में से 24 घंटे क्रियाओं में ऐसे लगे रहते थे। क्यों? उनके पास तो माधुर्य रस है भाई, उनके पास क्या है? माधुर्य रस है। तो निष्ठा वाला रस उनके पास नहीं होगा क्या? निष्ठा वाला गुण उनके पास होगा कि नहीं? ये 5 रसों के 5 विशेष गुण होते हैं। किसी के अंदर निष्ठा है तो समझ लो शांत रस को प्राप्त है वो व्यक्ति। यहां से भक्ति चालू हुई। अभी वो ब्रज के पेड़ पौधे गाय बैल के बराबर स्तर पे आया, जिसमें ब्रज के पेड़ पौधे शांत रस का अनुभव करते हैं। ब्रज के मोर, शुक, सारी, गाय, ये भगवान का दर्शन करते रहते हैं, भगवान के गुणों का, नाम का गान करते रहते हैं। इनका रात दिन यही जीवन रहता है। वृक्ष आदि ये निष्ठा है। अगर कोई दास्य रस में है तो उसमें गुण आ जाएगा, उसके अंदर सेवा का लक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेवा का लक्षण। और यदि कोई दास्य रस में नहीं है, स्वामी रस में है, तो उसके अंदर सेवा ग्रहण करने का गुण हो, सभी से सेवा ग्रहण करेगा। सेवा करेगा नहीं, वो भगवान और भक्तों की जो सेवा का गुण है वो उसमें नहीं देखा जाएगा, सेवा ग्रहण का गुण देखा जाएगा। अर्थात संसार में जीव स्वामी बनने की होड़ में लगा रहता है। एक सेवक से पेट नहीं भरता तो दो से नहीं पेट भरता तो तीन, तीन से नहीं भरता तो चार। सेवकों की संख्या अधिक बढ़नी चाहिए, ये संसार की वृत्ति है। जैसे आपके समक्ष में बैठा, जो सेवा लेने के प्रति अत्यधिक इच्छुक रहते हैं लेकिन सेवा करना नहीं चाहते। सेवा मिलते ही ऐसा लगता है जैसे कोई एकदम प्राण हर लिए हो किसी ने। कोई सेवा देने वाला दिखाई दे जाता है, ऐसा लगता है प्राण हारक आ गया, ये प्राण हरने वाला। क्योंकि निष्ठा का ही लक्षण नहीं है तो सेवा का लक्षण कहां से आएगा? निष्ठा होगी तब ना सेवा का लक्षण आएगा। संसार में प्राय बहुत सारे लोग भगवान की सेवा करते हुए देखे जाते, भक्तों की सेवा करते हुए देखे जाते, लेकिन उन निष्काम सेवक नहीं होते। उनके अंदर कामना होती है भगवान की सेवा करने से मेरा बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, भगवान की सेवा करने से मेरे को इतना फायदा हो जाएगा, भगवान की सेवा करने से मैं इस दुख से बच सकता हूँ। ये लक्ष्य होता है। भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, हमारा प्रीति है भगवान से, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोच पाते। तो सनातन गोस्वामी किस स्तर के भक्त हैं, रूप गोस्वामी किस स्तर के भक्त हैं, उनकी निष्ठा से पता चलता है। 24 घंटे में 24 घंटे, वो तो माधुर्य रस के पथिक हैं। 24 घंटे में 24 घंटे उनका भक्तिमय जीवन व्यतीत होता है। जैसे हमने बताया प्रतिदिन वो गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं प्रतिदिन। और ऐसा ऐसा नहीं हम पहले लगाते थे अब छोड़ दिया हमने, शुरुआत में हमने भी बहुत ऐसा किया। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना, जैसे हम भी बोलते हाँ हम भी पहले निर्जला एकादशी रखते थे, अब तो जैसे 80-90 साल की उम्र हो गई है 50 साल जैसे निर्जला एकादशी रखा, अब भाषण देते हैं बस, अब हो नहीं पाता। बोले पहले हम भी रखते थे, जैसे पहले मैंने 50 साल रख लिया जैसे, हाँ। एक दो बार, दो चार महीने, चार छह महीने रख लेने के बाद ही आदमी ऐसा सोचता है, लेकिन जब तक निष्ठा का लक्षण नहीं आता ऐसा कर भी नहीं कोई सकता है, हो ही नहीं पाएगा उससे। जैसे हमारी निष्ठा खेलकूदों में है तो रात भर खिला लो, हमारी निष्ठा भोजन में तो कितनी भी दूर तक पैदल चलवा लो पराठे के खिलाने के लिए या पुआ खाने के लिए, कितना भी तेल फूक के जाएंगे बढ़िया पार्टी खाने। हमारी निष्ठा संसार के व्यवहारों में तो रोज इधर उधर व्यवहार निभाने का जहां जरूरत पड़ती है, रोज इधर शादी में उधर शादी में, दिन में 8-8 शादियों में आदमी चला जाता है, निष्ठा है वो। संसार में जहां निष्ठा है उनके आदेश का पालन करने में आदमी सहज रूप से चला लगा रहता है। पैसे में निष्ठा है तो दिन भर पैसे की कमाई करवा लो, थड़े पर बैठा रहेगा सुबह से लेकर के रात तक। एक घंटा जप में निष्ठा नहीं तो आधा घंटा भी नहीं बैठ पाएगा, उसको दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, और दुकान पे सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाएगा। तो कार्य तो निष्ठा करवाती है ना। सनातन गोस्वामी की निष्ठा जिसमें कि प्रतिदिन वो परिक्रमा लगा रहे हैं, और कब तक लगाया? वृद्ध हो गए, भगवान से तब नहीं देखा गया। और ठाकुर जी आकर के कह रहे हैं, बाबा अब रहने दो, बहुत हो गई परिक्रमा। ठाकुर जी, नहीं नहीं लाला, नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को क्या कह रहे हैं, नहीं लाला, नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, नियम से ही तो भगवान मिलेंगे। कैसी विनम्रता पूर्वक, जबकि भगवान बातें कर रहे हैं उनके साथ, भगवान उनके लिए दूध का लोटा लेकर के आ रहे हैं, उस स्थिति में भी वो नियम का कितना कट्टरता से पालन करते हैं। हमें तो अगर कह दिया जाए ना कि भाई कम से कम 6:30 बजे तक हॉल छोड़ करके मत जाओ भाई, जब करने जब जाओ कि ठाकुर जी को कह रहे, नहीं लाला ये तो भजन नहीं, ये तो भक्ति है, इसके बिना कल्याण कैसे होगा जीवन का, इसलिए साधना को नहीं छोड़ सकते। चलते 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 शरीर साथ नहीं दे रहा है तो कई बार गिर जाते, कभी गर्मी है, तीक्ष्ण सर्दी है, ब्रज में तो वैसे ही सर्दी गर्मी दोनों ही तेज पड़ते, तो कई बार वो शोक में भगवान सामने प्रकट होकर के, बाबा आप रहने दो, नहीं लाला। आखिर में ठाकुर जी ने दया करते हुए अपने चरणों से बोले, लेकिन तुम इतना इतनी परिक्रमा क्यों लगाते? बोले, भगवान के चरण इस पर आरूढ़ है, भगवान के चरण चिन्ह है, भगवान ने लीला किए हैं इस गिरिराज पर, वहां जाता हूं मैं तो मेरे हृदय में वो लीलाएं जागृत होने लगती। ठाकुर जी स्वयं आकर के कहते हैं, अच्छा ये शिला ले लो गिरिराज जी की, इस पर गौ माता के भी चरण है, इस पर मेरे भी चरण है, इसमें मेरी लकुटी के भी निशान है, इसमें मेरी बंसी के भी निशान है, इस पर बहुत सारे निशान हैं, ये सब चीजें देख करके आपका यहीं पर आप इच्छाओं को पूरी कर लेना, आप इसकी 4 परिक्रमा लगा लिया। तो देखो ठाकुर जी का हृदय कितना पिघला, अपने आप भगवान का हृदय पिघलता है, हम तो भगवान में ही दोष लगा देते हैं, भगवान की कृपा ही नहीं हो रही बोले। तो उन्होंने शिला दिया, जब ठाकुर जी ने शिला दिया इधर शिव जी का हृदय भी पिघला, शिव जी भी कह रहे हैं, बाबा आप इतना दूर क्यों आते हो मेरा दर्शन करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, देखो कई बार भगवान का दर्शन कई बार मिल जाता है ना व्यक्ति को, तो फिर भक्तों को तो मक्खी मच्छर समझता है, सोचता मैंने सपने में ही दर्शन हो जाए ना उसको, इनको तो कभी सपना हुआ ही नहीं, बोले मेरे कोई सपना हुआ है बस। लेकिन ये प्रतिदिन गोपेश्वर महादेव के वृंदावन में दर्शन करने जाते, तो साक्षात गोपेश्वर महादेव कहते, नहीं नहीं आप मत आया करो, बोले नहीं मुझसे रहा नहीं जाता, इसे निष्ठा कहते हैं। तो रास्ते में ही बनखंडेश्वर महादेव के रूप में भगवान प्रकट हो जाते सेवा कुंज में, जो ज्यादा दूर नहीं, इसको कहते हैं जब ऊपर वाला कृपा करता है तो नीचे सबको कृपा करनी पड़ती, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे हर कोई, शिव जी की भी कृपा हो गई। आज भी वो शिला वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में विराजमान, हम लोग चाहें तो जाकर के दर्शन कर सकते, आज भी वो स्वयं प्रकट बनखंडेश्वर महादेव बनखंडी में विराजमान है, उस समय तो सब जंगल था, जंगल था, आजकल तो मार्केट बन गया है, लोही बाजार। तो सनातन गोस्वामी का कितना अद्भुत जीवन चरित्र है, हमें इन सिद्धांतों को जीवन में लाना ही होगा यदि हम वास्तव में भक्ति रस को पाना चाहते, नहीं तो भैया ये थोड़े दिन का शरीर मेहमान है, थोड़े दिन में ये छूट जाएगा, और सब मेहनत पानी में चली जाएगी। इसलिए ये जीवन में अत्यधिक श्रद्धा के साथ साधु संग करना सीखना चाहिए। कैसे? अत्यधिक श्रद्धा के साथ, जिज्ञासा के साथ साधु संग करना सीखना चाहिए। जैसे वो ब्राह्मण को निष्ठा प्राप्त हुई सनातन गोस्वामी की दया से, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं, हमारे अंदर साधु संतों भक्तों वैष्णवों के प्रति सम्मान नहीं, अंदर तीव्रता नहीं, आकांक्षा ही नहीं है जानने की, तो कोई व्यक्ति कब तक हमें ऐसे पकड़ पकड़ करके, नाक पकड़ के दवाई पिलाए, कठिन हो जाता है। और कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हमारी जिज्ञासा भगवत भक्ति के विषयों में कम होती है, संसार के विषयों में बनी रहती है, यहां तक कि मंदिर में आने के पश्चात भी संसार की जिज्ञासा को और आग लगाता है हमारे पास मोबाइल। जैसे निताई प्रभु हैं, इनके पास मोबाइल नहीं रहा इतने लंबे समय से, तो इनकी निष्ठा काफी बढ़ती चली गई और लंबे समय से भगवान की सेवा में लगे। प्राय देखा जाता है जिनके पास मोबाइल रहता है वो लोग निष्ठावान कभी बन ही नहीं पाते, कभी नहीं बन। पहले टीवी था, उसका भी बाप मोबाइल हो गया। संसार में निष्ठा पैदा कर देता है। जरूरी हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन इसको उस स्तर पर यूज करना कितना दुर्लभ हो गया आज के समय। कथा में भी अगर फोन आ जाएगा ना, तुरंत आदमी, हाँ बोलो सेठ जी, बॉम्बे से फोन आया भाई। पूछे ना कोई, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ से फोन आया? बॉम्बे से फोन आया, विशेष फोन आया, उसमें कथा वार्ता कोई महत्व नहीं रखती। इसको स्वीकार करना ज्यादा जरूरी। इसलिए मोबाइल से प्रायः लोग संसार के प्रति अत्यधिक उत्सुक हो गए, अत्यधिक जिज्ञासु हो गए, और वो इतनी जिज्ञासा को बढ़ाता है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, भक्ति की जिज्ञासा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। 1 घंटे की भक्ति की जिज्ञासा क्या करेगी कहाँ 23 घंटे की भौतिक जिज्ञासा में जीव फंसा हुआ है। उसमें इतनी श्रद्धा कर लेता आदमी, हर महीने कैसे भी उधार लेकर के भी डाटा का रिचार्ज करता हो, और यहाँ भक्ति का रिचार्ज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सौभाग्य समझता है अगर भक्ति का रिचार्ज ना मिले तो अच्छा है बोले हाँ, तो भक्ति रस कहाँ मिलेगा? और जब भक्ति रस नहीं मिलेगा, 2-4 साल ऐसे झूले खाते 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 आदमी भक्ति को छोड़ देता है, क्योंकि रस ही नहीं मिला उसको, उसको लगता है कि भाई भक्ति में कुछ है ही नहीं। तो इन आचार्यों का जीवन ये शिक्षा देता है कि निष्ठा की ताकत कितनी होती है। इतनी निष्ठा की शक्ति से 24 घंटे में 24 घंटे भजन कर पाते थे, क्योंकि आत्मा के स्तर पर चले जाते थे। शरीर के स्तर वाला व्यक्ति इतना रस का आस्वादन नहीं कर सकता, आत्मा के स्तर का व्यक्ति ही 24 घंटे में 24 घंटे रस का आस्वादन कर सकता। तो हमें इसका आस्वादन करने का चेष्टा करना है, इनके सच्चे अनुयायी बनना है, और सच्चे अनुयायी तभी बनेंगे जब हम प्रभुपाद जी के इन आदेशों का पालन करेंगे। कम से कम साधना काल में सुबह में 4-5 घंटे हमें मोबाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। शाम को भी कम से कम कथा में आरती में मोबाइल को स्विच ऑफ करना सीखना चाहिए। संसार के साथ अगर नियमित रूप से इन क्रियाओं को कर लेंगे ना, सुबह का भजन मंगल आरती सुबह 4:30 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक, और शाम को, और ये भी विदाउट डिस्टरबेंस के, वैसे तो जीवन भर इससे दूर रहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई अगर इसका आस्वादन चखना ही चाहता है, वास्तव में भक्ति रस को थोड़ा सा चखना चाहता है, तो उसको इतना तो कम से कम करना पड़ेगा। इतना कर लेगा तो निश्चित बच पाएगा, लेकिन हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है कई बार। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। बोलो षड़ गोस्वामी वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जय। धन्यवाद आप सभी भक्तों का, विशेष रूप से हमारे रुक्मिणी विठल प्रभु, के दर्शन हो रहे हैं। और राजा राम प्रभु कहाँ से दर्शन दे रहे हैं, ये तो ट्रेन में होने चाहिए थे। ट्रेन में ही है क्या? हाँ ट्रेन में ही है। धन्यवाद आपका। तन्मय प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद कथा श्रवण करने के लिए, और आशा करते हैं कि आप इन कथाओं को नोट डाउन करेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे जब आपको कहा जाएगा। ठीक है तन्मय प्रभु। हरे कृष्णा। अर्जुन प्रभु का भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। और तरुण प्रभु का भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। फैजपुर से भी भक्तों का धन्यवाद, कात्यायनी माता का धन्यवाद। और मधेपुरा से भी लाल बाबू एंड कंपनी का, सभी भक्तों का, आशीष वगैरह सभी भक्तों का धन्यवाद, अभिषेक का और स्मृति का, इन सभी भक्तों का धन्यवाद। तंसु जी का भी धन्यवाद, पूरे परिवार के साथ ये लोग भी कथा श्रवण कर रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साहेब राव कदम जी का भी धन्यवाद। कदम जी अपनी प्रगति को बढ़ाइए और समय निकाल करके संसार का त्याग करने का चेष्टा करना हमने, ठीक है। भजन रहस्य प्रभु आपका भी धन्यवाद कथा में भाग लेने के लिए। रवि जी का भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। धनपति प्रभु का भी बहुत बहुत आभार, रोज ही कथा सुनते हैं धनपति जी भी। और सुश्री माता जी का भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हिमांशु जी का भी धन्यवाद, इनके दर्शन नहीं हो रहे। पूनम राय जी का भी धन्यवाद। मनोज बारी जी का भी धन्यवाद। शरद प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जयसवाल प्रभु का भी धन्यवाद। पूनम राय जी का भी धन्यवाद। अमृत गंगा माता का भी धन्यवाद। लीना माता जी का भी धन्यवाद, पूरे परिवार के साथ इनके भी दर्शन नहीं होते कई बार। मधुसखा प्रभु एंड ऑल द टेम्पल डिवोटीज, आप सबका आभार। दर्शन हो सकते हैं क्या सभी भक्तों के मधुसखा प्रभु? वैकुंठ प्रभु भी आज लाइन पर हैं, लेकिन वैकुंठ प्रभु के फोटो के दर्शन हो रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। हरे कृष्णा। सोनम माता जी का भी धन्यवाद। मैं देखता नहीं हूँ बाकी समय में, ऐसा तो नहीं कि आप लोग लास्ट में धन्यवाद के समय में ही लाइन पर आते हो? इसलिए सब लोग बाकी समय भी थोड़ा कैमरा ऑन करके रखा कीजिए, जिससे कभी कभी नजर पड़े मेरी तो पता चले कि वास्तव में कथा सुन रहे हैं, क्योंकि गुमराह करना बहुत सहज है आज के समय में। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं और क्रिया में नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह चालाक हो। कुछ लोग हैं मेरी तरह चालाक, जैसे रुक्मिणी विट्ठल प्रभु हैं, हमारे तरुण प्रभु हैं, कुछ लोग चालाक की लिस्ट में हैं मेरी नजर में। और मधुसखा प्रभु भी हैं उस लिस्ट में, कई बार वो भी बीच बीच में लगा करके साइड में रख देते हैं, लेकिन अभी इन लोगों ने थोड़ा सा दर्शन दिए हैं उसमें मधुसखा प्रभु तो लगा के ही साइड में गायब हो जाते हैं कई बार। तो बाकी सब भक्त लोगों के लास्ट में दर्शन होते हैं, तो बाकी समय भी आप वीडियो को चालू रख सकते हैं और आपको हम देखते रहें तो अच्छा लगता है, हमें उत्साह मिलेगा आप सभी भक्तों से भी। जैसे हमारे राजा राम प्रभु निरंतर दर्शन देते रहते हैं, ये चालाकी नहीं दिखाते, ये ट्रेन में सफर कर रहे हैं और रास्ते में वहां से ही दर्शन भी दे रहे हैं। तो तन्मय प्रभु भी बीच बीच में थोड़े से गायब हो जाते हैं ऐसा लगता है मेरे को, अभी पिताजी के थोड़े लक्षण आ जाते हैं संतान में भी, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सब भक्तों का आभार, हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी भक्तों।
हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आज थोड़ा सा समय पहले हमने खत्म किया है, तो कोई पूछना चाहता है कुछ तो पूछ सकते हैं। सब समझ में आ जाता है, सर इतने होशियार हैं। हाँ यस, भजन रेस पे पूछिए।
अनम्यूट।
हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो,
पूछिए प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, अभी आपने जो बात कही कि दोनों विपरीत दिखाई पड़ती है भक्ति में, जैसे कि नियम का अगर पालन करने जाए तो अहंकार बढ़ जाता है, और अगर हम नियमों का यानी कि हम कृपा मा मार्ग भी इस हरे।
आपका नेटवर्क चला गया था बीच में।
हाँ प्रभु जी, तो एक कृपा मार्ग भी इसे बताते हैं प्रभु जी, तो ये बात थोड़ी मुझे समझ में नहीं आई प्रभु जी की, फिर तो प्रभु अजामिल महाराज ही लास्ट हो पे ऐसा समझ सकते ऐसा हमारे
क्या क्या
हमारे भौतिकवादी लोग, अजामिल महाराज जी ने अजामिल महाराज जी के ऊपर जैसी कृपा हुई थी लास्ट में।
हाँ बहुत होशियार है आप। हाँ
तो कुछ कुछ हमारे जैसे जो पतित जी हैं तो इस तरीके से भी सोचते हैं कभी कभी।
अच्छा आइडिया,
कृपया इस पे प्रकाश डालेंगे तो प्रभु थोड़ा
नारायण का नाम ले लें और कृपा हो जाए।
हरी बोल हरी बोल।
ऐसा होता नहीं है, जीवन में नारायण का नाम लेना ही पड़ता, तभी लास्ट में नारायण का नाम मिलता है। इसलिए भगवान की कृपा होती है, अहेतु की कृपा होती है, जिसमें कि जीव कुछ भी ना करे। कई बार भगवान ऐसे भी कृपा करते हैं, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, इसे जनरली एक जनरल लॉ के रूप में नहीं लिया जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति को कोई कॉलेज पीएचडी डिग्री दे दे, जैसे कई यूनिवर्सिटीज ने तेंदुलकर को पीएचडी डिग्री दे दी, तो बिना पढ़े लिखे ही पीएचडी हो गया, फिर तो वो
हाँ,
क्यों हो गया? वो उसके ऊपर बाकी लोगों ने दया कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे महान महान काम किए जो पीएचडी वाले करते हैं, इसलिए उनको फोकट में पीएचडी दे दी गई। लेकिन ऐसा उदाहरण समझ करके कोई व्यक्ति ये सोच के बैठ जाए कि मेरे को भी ऐसी पीएचडी मिल जाएगी, तो भैया जरूरी नहीं उसको मिल जाए। इसलिए जनरल लॉ तो ये है कि हमें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। तो अजामिल की कथा से ये सीखना चाहिए कि अंतिम समय में भी भगवान का नाम लेने पर भगवान ऐसी विशेष कृपा कर देते हैं, तो भैया हमें कितना जल्दी इस नाम को स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि ये सीखना चाहिए कि ये तो बहुत बढ़िया, जीवन भर मौज करो, लास्ट में नाम ले लो और उद्धार कर लो। ये पक्ष नहीं सिखा रही अजामिल की कथा। अजामिल की कथा सिखा रही है कि जब जागे तभी सवेरा, अंतिम समय में भी भगवान के भक्तों की संगति हो जाए, उनसे कथा सुनने को मिल जाए, तो भी उद्धार हो जाता है। तो जो व्यक्ति शुरू से ही इस कथा को सुनकर के गंभीर बन जाए, तो उसके उद्धार की संभावना कितनी अधिक बढ़ जाती। समझ रहे हैं? ये वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। भजन रहस्य प्रभु, तन्मय प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ राकेश जी का प्रश्न है कुछ, फिर तन्मय जी ने हाथ खड़ा किया। अभी पहले उंगली कर रहे थे, अब हाथ कर। यस प्रभु, अनम्यूट कीजिए अपने को। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए।
हाँ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
दंडवत प्रभु जी।
राकेश राय, बोकारो शिव सिटी झारखंड।
झारखंड समझ गया, राकेश जी यहाँ आ चुके हैं, हम आपसे मिल चुके हैं। पूरे परिवार के साथ आए थे आप।
हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्णा, धन्यवाद, धन्यवाद
जी। प्रभु जी, प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो जी, तो परिवार के साथ सुन भी रहे हैं, पूनम राय पत्नी भी हमारी सुन रही हैं आपकी कथा को। जी प्रभु जी,
ये क्या प्रश्न है आपका?
दोनों लोग जो है आपके श्रीमुख से ये कथा श्रवण प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग डेली क्लास में जुड़े हैं और आपके द्वारा जो है दिए हुए मार्गदर्शन का हम लोग पालन करें।
बहुत सुंदर। यस, तन में प्रभु, अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम।
धन्यवाद
प्रभु जी। अगर इस जन्म में भक्ति रस की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर अगले जन्म में क्या होगा?
अगले जन्म में गटर रस की प्राप्ति हो सकती है। कई प्रकार के अन्य रस हैं संसार में, उन रसों की प्राप्ति हो सकती है। आप कौन सा रस चाहते हैं? भक्ति रस तो इसी जन्म में हमने पाना है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।